अंतर्राष्ट्रीय कीट दिवस आज। इस अवसर पर गांव आजीविका और हम इसे पर हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा से डीन डॉक्टर विजय कुमार पराटकर जी मोबाइल वाणी से रूबरू होने जा रहे। आप सुन रहे मोबाइल वाणी और मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुरकर। नमस्कार सर जी।
नमस्कार जी।
सर जैसा कि अभी वर्तमान समय खेती किसानी का समय है, किसान अपने खेत तैयार करने में लगा हुआ है,
बिल्कुल,
और बोवनी का समय अभी बहुत नजदीक आ गया है, तो इस अवसर पर आप मोबाइल वाणी के श्रोताओं को और किसानों को खेत तैयार करने के पूर्व बोवनी के पूर्व क्या सलाह देना चाहेंगे?
निश्चित रूप से ये बड़ा समय जो बड़ा किसान भाई के लिए बड़ा कहना चाहिए दौड़ धूप का और प्रबंधन का बड़ा अच्छा समय है। और ये मान के चल रहे कि हम लोग इस साल जो मानसून है, क्योंकि जिसे गर्मी पड़नी चाहिए थी वो नहीं पड़ पाई, तो कहीं ना कहीं जो कहना चाहिए पर्यावरण का या जो मानसून के लिए जो लय बननी थी वो शायद नहीं बन पाई है। तो ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि जो हमको जो पूर्वानुमान में आए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि मानसून करीब 4 से 6 दिन लेट हो सकता है। तो मेरी आप लोगों से ये सलाह रहेगी, क्योंकि हमारे किसान भाई ज्यादातर परंपरागत खेती करते हैं, तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि रोहिणी लग गया, फिर मृग लग गया, फिर आद्रा लग गया, तो इसके आधार पे आप प्रबंधन अभी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि निसर्ग ने इतना बदलाव किया है, इतना बदलाव मौसम में आ गया है कि यदि हम पुराने परंपरागत को ध्यान में रखते हुए यदि करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे साथ नुकसान हो सकता है या घाटा हो सकता है या फायदे की बात नहीं हो सकती। इसलिए जो वैज्ञानिक जो अपनी अनुशंसाएं आ रही है उसको यदि पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यदि हम खेती करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि यदि हमारे क्षेत्र में 4 इंच बारिश, 4 इंच का मतलब होता है 100 मिलीमीटर वर्षा यदि हो जाती है, इसमें 100 मिलीमीटर के लिए लगभग 4 से 5 बारिश की आवश्यकता होती है, तो इतने में 100 मिलीमीटर की वर्षा हम मान लेते हैं। यदि उसके बाद में हमको बुआई का मतलब प्लान या अपना प्रबंधन करना चाहिए तो हम लोग आपको सलाह देते हैं। परंतु ज्यादातर किसान भाई सूखे की बोनी की दशा में रहते हैं, तो ऐसी दशा में कहीं ना कहीं अंकुरण की परेशानी आ जाती है या बहुत ज्यादा खाली जगह रह जाती है। जैसे खास करके बहुत सारा क्षेत्र हमारा कपास का है, एक तो वैसे ही हम लोग बहुत अंतर पे 3-3 फीट पे हम लोग बीज बोते हैं, और होता क्या है कि यदि हमने जैसे प्रबंधन में अपनी बुआई के बाद यदि बारिश कुछ अधकतरी हो गई या सूखे की दशा बन गई, तो ऐसे समय में आपका अंकुरण प्रभावित होता है, और यदि एक बार अंकुरण प्रभावित हो गया तो आपका जो उत्पादन जो मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल पाता, फिर हमको दूसरे भी खर्च करने पड़ते हैं, कहीं पानी डालना है या फिर से बुआई करना है या दूसरी फसल खाली जगह में लगाना है, इसमें आपका खर्च बढ़ जाता है, और जो हमको उच्चांक होना चाहिए उत्पादन का पूरा उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिलने की दशा में आपके ये थोड़ी सी गलत बात हो जाती है या कहना चाहिए फायदा नहीं हो पाता। इसलिए पूर्वानुमान को ध्यान रखते हुए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। और एक सलाह मैं और देना चाहूँ, क्योंकि आपकी जुताई का काम तो मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र में जुताई वगैरह हो गई है, खेत साफ है, लाइन वगैरह निकाल के आप छोड़ दीजिए, हो सकता है तो खाद की व्यवस्था आप सूखे की दशा में यदि आप कहीं रिंग पद्धति से देके रख देते हैं, जब बारिश होगी आप तब बोनी करेंगे, ये तो बात सही है। पर मेरा इसमें एक सलाह आपसे है कि बुआई करने के पहले हमको हमारी जमीन कैसी है, हमारी जमीन में कैसी किस्म का मतलब ज्यादा अच्छा उत्पादन मिल सकता है, हल्की जमीन है तो हमको शीघ्र पकने वाली लगानी पड़ेगी, मध्यम भारी है तो मध्यम अवधि की लगानी पड़ेगी, और बहुत भारी जमीन है तो हमको उस हिसाब से देरी से पकने वाली किस्म को लगाना होगा। अन्यथा क्या होगा कि यदि हम एक ही किस्म को सभी जगह लगा देंगे तो हल्की जमीनों में उत्पादन आपको ठीक से नहीं मिलेगा, मध्यम भारी में कहीं पानी कम हुई तो उतना उत्पादन नहीं मिलेगा, या भारी जमीन में हमने जल्दी पकने वाली किस्म लगा दी तो वो पक के तैयार जल्दी हो जाएगी और आपको जितना उत्पादन मिलना चाहिए नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको ये प्रबंधन अपने घर पे करके रखना पड़ेगा कि जमीन के हिसाब से हमको किस्मों का चयन करना पड़ेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी हल्की जमीन है तो हमको 140 दिन 150 दिन की अवधि की आपको किस्म लगानी पड़ेगी, पर वही हमारी भारी जमीन है तो हमको लंबी अवधि की किस्म लगाना पड़ेगा, जिससे कि हम दोनों फसल मतलब वो फसल लेके हम अपने गर्मी की फसल की तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपको प्रबंधन में करना पड़ेगा। एक और हम गलती करते हैं हमारे क्षेत्र में, वो है कि आप समझ रहे कि कपास की फसल लगाई तो पूरे 2 सीजन या दो मौसम हमारे ऐसे निकल जाते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ कपास आता है, फिर हम जब बेचते तो सिर्फ पैसा आता है, परंतु ऐसा नहीं है। होता यह है कि जैसे कोई किसान कपास वाले किसान है तो हमारी अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग उद्देश्य के होने के कारण से, उद्देश्य का मतलब अरे घर में आपको पैसे ही थोड़े लग रहे कपास से, कपास से तो कुछ ही नहीं, घर का परिवार का काम चलना नहीं है, खाना है, अनाज है, दलहन है, तिलहन है, सब्जी है, ये सब बातें जो है कपास की फसल अकेले लगाने से नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है कपास की फसल आप लगाइए, परंतु इसके बीच में 3 महीने जमीन बिल्कुल खाली रहती है। अब हमारे यहाँ का किसान क्या करता है कि कपास बो दिया, फिर सितंबर महीने तक के बखर आड़ा खड़ा पता नहीं कैसे मतलब चला के खेल को साफ रखते हुए व्यवस्था करना अच्छी बात है, परंतु कहीं ना कहीं हम लोग हमारे जो नैसर्गिक संपदा है उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि कपास के फसल में आप चाहे मूंग है, उर्द है, मूंगफली है, सोयाबीन है, मक्का है, ऐसे बहुत सारी फसलों को आप लगाकर अपना उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इसमें एक विशेषता ये रहेगी कि कपास का उत्पादन तो पूरा मिलेगा और बोनस में आपको जो 3-4 महीने की समय मिलता है जिसमें फसल की बढ़वार थोड़ी सी धीरे होती है कपास की, उसमें आप अपना अच्छा सा उत्पादन लेके अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारी दलहन है, तिलहन है, मोठ है, कुल्थी है, ये ऐसी फसल भी उसके बीच में आप लगा लीजिए। वैसे तो आप कपास और अरहर तो लगाती है, परंतु कपास और अरहर की फसल क्या होता है आपकी पूरी दोनों मौसम में आपका समय ले लेती है और बदले में फिर 6-8 महीने के बाद में आपको उत्पादन मिलता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये 2-3 चीज है जरूर अपनाएं, और यदि हम ऐसा करते हैं ना तो ये जो समय आने वाला है आज, मतलब मैं भी ये भी कहूंगा कि आप अभी सूखे का समय है तो अभी खादवाद खरीद के रखवा लीजिए, भंडारण कर लीजिए। और मैं तो कहूंगा कि खेत यदि तैयार हो गए हैं तो लाइन वाइन निकाल के यदि हमने खाद को यदि हम जिसको रो प्लेसमेंट कहते हैं या रिंग प्लेसमेंट कहते हैं यदि आपने अंदर में डाल दिया है तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। जब आपको तब तक के घुल के या कुछ घुलेगा कुछ रहेगा, पर जब आप मक्का का बीज मक्का या कपास का जब बीज लगाएंगे तब आपको समय पे लगा के आप उसका उत्पादन ले लीजिएगा। एक और मैं बात कहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हम खाद डालने में गड़बड़ी करते, तो हम लोग कई जगह ऐसा भी कहते हैं कि ठीक है आपने खाद अभी नहीं डाला तो एक बार चौफुली करने के बाद बीच गोबर खाद वगैरह डाल दीजिए थोड़ा सा, एक एक मुठी एक एक जहाँ पे चौफुली पे आता है वहां पे, और बाद में जब अच्छी नमी आ जाए तो आप मक्का का बीज कपास का बीज टोपाई कर दीजिए या बुआई कर दीजिए, और जब 20 दिन से 25 दिन की फसल हो जाए तब आप ये मान के चले कि पौधा हमारा बढ़िया बढ़ गया है, जमीन में लग गया है, उस समय जो हमारा नत्र और पोटाश की जो मात्रा है वो 20 दिन के अंतर से 2-3 बार में दे दीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका कई बार देखने में आया है कि यदि हमने खाद और बीज एक साथ बोया है तो अधिक खाद होने के कारण, क्योंकि हम खाद तो खेत में नहीं डालते पूरा, खाद बहुत महंगा है, इसलिए हम लोग पौधे के पास ही या आसपास डालने की सलाह देते, तो कई बार क्या होता है कि वो जो जहां बीज बोया जाता है वही खाद डल जाता है, और जब हल्का सा भी पानी आता है तो वो घुल के वो रसायन बीज को नुकसान कर देता है, इसलिए पौध संख्या में बहुत कमी आ जाती है। तो ये दोनों पद्धति आप अपना सकते हैं। तो पहले आप खाद दीजिए, अच्छा फैलाव करके दीजिए, जिससे कि जब वो पानी आएगा और बीज लगाएंगे फिर वो अपने आप उपलब्ध होगा, ये एक अलग व्यवस्था है। परंतु नहीं होने पर भी आप फसल में कपास की फसल में जब आप पौधा बढ़ जाए 20 से 25 दिन का हो जाए, वो अपना कहना चाहिए उसको स्थापन हो जाए, इसको हम स्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, अच्छा स्टेब्लिश हो जाए तब आप उसको उपयोग कर लीजिए।
सर जी
ये तो प्रबंधन कपास का,
जैसा कि आज हम विश्व कीट दिवस के अवसर पर बात कर रहे हैं तो हम आपसे जानना भी चाहेंगे कि खेती किसानी में कीट क्या प्रभाव छोड़ते हैं और कीट के कितने प्रकार होते हैं।
राइट राइट राइट, समझना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है ये बात, किसान भाइयों तक जाना चाहिए। और जब हम कीट की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर हमारा पैसा है ना, या कई बार डरा हुआ रहता भाई किसान भाई कि हमारा सबसे ज्यादा नुकसान कीट ही करता है ना, तो इसके प्रबंधन की बात अपन करेंगे। वैसे तो आपने ये जो टॉपिक रखा है कीट, विश्व कीट दिवस के आधार पे, तो बहुत अच्छा समसामयिक है, और मैं कहता हूं कि विश्व एक समाज है। जैसे अपने अपने क्षेत्र में हम लोग चलते ना कार्य विशेष में एक समाज के जो से लोग होते, वैसे विश्व को एक समाज माने, तो विश्व में का जो समाज है इसमें प्राणी मात्र है, जीव है, जंतु है, एक का मतलब पूरा कहना चाहिए जो जुड़े हुए लोग हैं, एक समाज मान के थे, तो उसमें आदमी भी है, मतलब हम मतलब हमारा समाज के साथ में उन लोगों को भी जोड़े, पशु पक्षी प्राणी ये सब एक समाज है और इसमें पूरा जीवन यापन का उनको अधिकार है। परंतु क्या हुआ है कि आज हमारी जैसे सोच हो गई ना कि हमको फायदा मिलना चाहिए, किसी कीड़े से नुकसान हो रहा तो हम उसके नियंत्रण की बात करते थे, तो इसलिए अब ये मान के चलते कि उनका भी अधिकार है, उनको भी जीने का पूरा अपना स्वतंत्रता मिलना चाहिए, उनका अपना जीवन यापन को मिलना चाहिए। इसलिए आजकल पहले हम लोग कृषि विद्या में या कृषि विज्ञान में इंसेक्ट कंट्रोल की बात करते थे हम लोग, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण, कीट नियंत्रण, पर अभी इसकी परिभाषा बदल गई है, अब हम कहते हैं कि कीट प्रबंधन। इसका मतलब यह है कि हमको कीट को समाप्त नहीं करना है, कीट जो निसर्ग में मिल रहा है इसका मतलब हमको नुकसान हो सकता है, पर जो हमें इनके फायदे नहीं मालूम वो भी काम कर रहा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि कीट का नियंत्रण नहीं करना है हमको, कीट प्रबंधन करना है। और कीट की बात करूं मैं आपको, खेती में जो नुकसान करते हैं वो है कीट कह देते हैं हम लोग बड़े बड़े इस क्षेत्र में, पर आपने देखा होगा कुछ कीट ऐसे भी हैं जो खेती में सहायक होते हैं या फायदे का दिखाते हैं या उन कीटों को समाप्त कर देते हैं जो हमारे को नुकसान करते हैं, नुकसान का मतलब हमारे फसलों को नुकसान करते हैं। तो ये कीट को दो भागों में बांट जाता है, पहला तो कीट, दूसरा है कीड़क, मतलब इंसेक्ट और पेस्ट, दो भागों में हम बांटते हैं, क्योंकि हम अभी अपना रुझान हमारा खेती के उद्देश्य से हम बात कर रहे हैं आप लोग से। तो कीट और कीट का मतलब हुआ जो इंसेक्ट है वो, और पेस्ट का मतलब कीड़क है, जो कीड़ा 5% से ज्यादा का नुकसान फसल को या व्यक्ति को या समाज को कर रहा है उसको हम कहेंगे पेस्ट। तो हमको कीट से नहीं बुराई रखनी, हमको रखनी बुराई या हम विरुद्ध जो चक्र चलाएंगे वो चलाएंगे पेस्ट से, पेस्ट मतलब पीड़क, जिससे पीड़ा होती हो नुकसान होता, क्योंकि जैसा आपका नुकसान होगा तो पीड़ा होगी ना आपको। अभी भी हम दिख रहे कि कपास में कितने कीड़े लगते हैं, तो कई कीड़े तो हमारे सहायक होते जो खेती के उपयोगी रहते हैं, पर बहुत सारे कीट आपके बहुत नुकसान करते हैं। अरे बड़े रूप में आप देख लीजिए कि कई बार चूहा के नियंत्रण के लिए सांप को बहुत अच्छा उपयोगी पाया गया है, तो कई बार अभी देखते ना, पहले हम लोग सांप के नाम से डर के मारे मार देते थे, परिभाषा बदल गई। अभी अभी देखना आपने सर्पमित्र बहुत सारे लोग आ गए हैं बीच में हमारे, तो वो सेवा का काम कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है आपको यहाँ परेशानी हो रही है उसको हटा दीजिए, जंगल में छोड़ दीजिए, वहां कहीं ना कहीं पर्यावरण के संतुलन की काम करेंगे। इसका मतलब अभी जो है हमारी जो सोच को बदलना होगा, तभी हम ये कहेंगे कि कीट और पेस्ट दोनों में अंतर करते हुए हमको जो फायदे की जो कीट है उसको सुरक्षित रखना होगा, और जो पीड़ादायक है जिसने जो नुकसान करते हैं उनको हमको प्रबंधन करना पड़ेगा। प्रबंधन करने का मतलब यह है कि किसी भी चीज को 100% समाप्त नहीं किया जा सकता, तो क्या होगा, यदि हमने उसको नियंत्रण के लिए गए प्रबंधन अपनी किया, हमने उसको पूरा नियंत्रित किया, उसका नाश कर दिया, तो उसके जगह में जो और पीड़ाधारी इंसेक्ट है या कीट है वो आक्रमण करेगा और फिर उसको नियंत्रण के लिए आपके पास कोई साधन नहीं बचेंगे। इसलिए हमको कीट प्रबंधन करना है, इस पे हमको चर्चा करनी होती है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो पेस्ट है, पेस्ट में आप हम मानेंगे जैसे अभी आपको बताया ना मैंने चूहे का नियंत्रण दिया
जी,
एक खेती में अलग अलग प्रकार के कीट होते हैं, पहले रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, कुछ चबा के खाने वाले रहते हैं, कई लोग जैसे अपने फसल के अंदर में या मतलब खोखला कर देते हैं जिससे कि पोषण ऊपर नहीं जा पाता। कई बार आपने देखा होगा संतरे में मौत लग जाती है, मौत लगना का मतलब एक मक्खी है वो जाके अपना रस चूसने के लिए जाती है, उसको रस चूसती है और उसी में फंगस लग जाता है। तो हमारे जैसे आपने देखा होगा ना कि हमारे संतरे में आपने एक लाल चक्तेदार संतरा बन जाता है जिसको माइट बोलते हैं, लालिया बोलते कई लोग चांदी का बोलते हैं, तो ये क्या है, ये कीट कई बार सनबर्न एक अलग होता है पर इसी के साथ में एक ऐसा होता है माइक होती है वो इसमें आक्रमण करती है और जो फसल का जो संतरे का जो कलर है उसको बदल देती है जिससे कि हमको सही रेट नहीं मिलते। तो तो कीट के प्रकार बहुत सारे हैं, परंतु हम उनके को सुरक्षित रखते हुए यदि हम ध्यान रखते हैं तो हमको चर्चा उसकी करनी पड़ेगी। मैं कहना चाहती हूँ कि किसी भी परिस्थिति में कीट पर नियंत्रण नहीं करना है, यदि हम ऐसा करते हैं तो ये अनुचित है। इसलिए इनकी 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 इनका प्रबंधन करके इनकी संख्या को संतुलित रखते हुए यदि कार्य करते हैं तो हम हमारे उत्पादन और उत्पाद की आवश्यकता को पूर्ति करते हुए संतुलन बनाए रखना करेंगे, मतलब उसको संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। क्योंकि पृथ्वी पर जो चक्र चल रहा है जिसमें कहा जाता है कि जीवो जीवस्य जीवनम, आपने सुना भी होगा, ये चक्र ये चलता रहेगा और विश्व में जीवो की संख्या संतुलित रहेगी, तभी हम ये कह पाएंगे कि भाई सभी जीवों को जीवित रहते हुए अपने भरण पोषण की बात करो या जागने की या जिंदा रहने की जो दशा है वो तभी हो पाएगी, वो सुरक्षित रहेंगे तो मानव जाति सुरक्षित रहेगी। और कहीं ना कहीं ये असंतुलन होगा तो हमारे लिए, पर्यावरण के लिए और मानव जाति के लिए बड़ी दुखदायी बात हो सकती है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि प्रबंधन के लिए, खेत के प्रबंधन के लिए हम लोग कुछ प्रयत्न करते हैं। जैसे आपने कपास लगाया तो चार पांच ऐसी पद्धतियां हैं जिससे हम ये कहेंगे कि भैया इसका नियंत्रण नहीं करना है, इनके इन पद्धतियों को अपनाकर यदि हम कीट पर ध्यान देते हैं, इन पर प्रबंधन करते हैं तो निश्चित रूप से वो जो नुकसान करने की गति को कम करेंगे या ऐसा कर देंगे कि जो नुकसान की दशा नहीं बने। तो हमारे किसान भाइयों ने आपने देखा होगी शस्य प्रबंधन कहना था पहले, तो वैसे तो शस्य प्रबंधन है, भौतिक प्रबंधन है, रासायनिक प्रबंधन है, जैविक प्रबंधन है और अभी आ गया है प्राकृतिक प्रबंधन। तो चाहे, और आप एक बात मान के चलिए, कीट का मतलब जो नुकसान करने वाली दशा, तो हमारे हिसाब से तीन चीजें आपके लिए खेती में दिखाई देती है, वो है एक तो कीट, दूसरा बीमारियां और तीसरा होता है खरपतवार। ये भी आपका आपके हिसाब से दुखदायी है जो नुकसान करते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए आपको ऐसी जो पद्धति अपनानी होगी, ज्यादातर किसान भाई के दिमाग में रहता है कि रसायन डाल दिया तो पूरा नियंत्रण मिल जाएगा, नहीं होगा ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनको नियंत्रण कर लिया पर वो जो रसायन का जो उपयोग किया गया है वो कहीं ना कहीं मानव शरीर में आएगा। और आज आप देख रहे हैं कि इन रसायनों के कारण से बहुत सारी कहना चाहिए परिस्थितियां बिगड़ रही है, बीमारियां बहुत सारी आ रही है और तब कहा जाता है कि यह रसायन को कम से कम करो। तो हमको इनके प्रबंधन के लिए ये चारों पांचों बातों की जो परिस्थिति हो सकती है, और दूसरा मैं किसान भाई से कहना चाहूंगा कि किसान भाई की दशा वैसे भी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं रहती, नाजुक रहती है, तो हम आपसे ये कहेंगे कि इन सब साधनों का उपयोग करते हुए यदि हम कीट प्रबंधन करेंगे तो हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा और हम लागत को भी कम कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो मैं कहूंगा कि चार पांच पद्धतियों को अपनाकर जो आपको अच्छा सुटेबल हो सकता है, जिसका प्रबंधन आप अच्छे कर सकते हैं, वो आपको अपनाना है। ये आपकी कार्यकुशलता और आपके चातुर्यता पे निर्भर करता है। तो मैं कहूंगा कि हमारे बहुत सारे किसान भी अच्छी खेती करते हैं, शस्य के जो प्रबंधन है उसमें जुताई है, गुड़ाई है, यहां तक कि मैं ये भी कहूंगा कि निंदाई है, ये सारे काम जो खेत में जो आप काम करते हैं वो आपको बहुत ही समझदारी से करनी होगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि जुताई हमको करना है तो जुताई यदि हमने 1 अप्रैल से यदि शुरू की है, क्योंकि हमारा खेत खाली होगा तो 2 महीने आपको बहुत बढ़िया मिलते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले भैया देसी हल से, क्योंकि हमारे क्षेत्र में देसी हल ही चलता है, तो ये मैं कहूंगा आपसे कि देसी हल चलाकर कम से कम 15 दिन उसको छोड़ दीजिए, जैसे एक शेड्यूल बना लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि खेती में तो हमने जो लिख दिया वैसे ही हुआ करके, है ना, पर मैं आपसे कहूंगा कि जैसे एक हल चलाया हमने देसी हल, मैं एमबी प्लाउ की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो देसी हल की बात कर रहा हूँ। देसी हल में भी यदि आप चलाना चाहे तो अपने ट्रैक्टर में चलाना चाहे तो मैं कल्टीवेटर की बात करूंगा। यदि हमने देसी हल चला लिया तो देखना आप खेत में वी शेप के आकार के एक आकृति बनेगी। जैसे आप देसी हल चलाएंगे ना आप, तो देखना आप खेत में वी शेप बनता है या डब्ल्यू शेप बनता है, समझ लीजिए आप। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारी एक एकड़ का खेत है तो हम जमीन को उपचारित करेंगे डेढ़ एकड़ में। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमने बखर, ज्यादातर किसान भाई के दिमाग में रहता कि बखर चला दे, बखर तो बाद में चलाना, पहले हमको जमीन को खोदने के लिए देसी हल चलाते हैं, और देसी हल चलाने के बाद तुरंत बखर मत चलाइएगा। देसी हल चला दिया उसको 15 दिन तक के धूप से सिकाई हो जाने दीजिए। हम ये मान के चलते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर तो 30 मतलब मई तक, मतलब जून और जुलाई सॉरी अप्रैल और मई का जो महीना है ये अच्छे तपिश के रहते हैं। इस साल जरूर परिस्थिति बदली और मौसम जो परिवर्तन कर रहा है उस हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा, परंतु यदि अच्छी धूप मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि हमने 1 अप्रैल से अपना कार्यक्रम बनाया है जुताई का, तो पहले आप 15 दिन में देसी हल चला लीजिए और 15 दिन इसको धूप से सिकाई होने दीजिए। उसके बाद में जैसे आड़ा किया है तो खड़ा आप, या पहले खड़ा किया होगा फिर बाद में आड़ा चलने दीजिए, इसको 15 दिन और धूप से सिकाई हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन अच्छे गहराई से उपचारित हो जाएगी सूर्य प्रकाश से। अब इसके बाद तीसरा जो हमारा चलेगा वो बखर चलेगा, पहले बखर चलेगा, आड़ा खड़ा चलेगा, उसको 5-6 दिन, उसको 7 दिन इसको लगा दीजिए और 7 दिन में आड़ा वाला बखर चला दीजिए। और उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी और समय है, धूप तप रही है, तो बीच में आप सार निकाल दीजिए, सार समझते हैं सार पाटी से। तो क्या होगा कि हमारी जो जमीन है अच्छी उपचारित होकर, उपचारित किससे करना है, सूर्य प्रकाश से करना है। हम अभी तो आपको ये कहना चाहेंगे कि रसायन से दूर रहे। यदि हमने ऐसा कर लिया है तो आप देखेंगे कि 5-6 सालों में आपके यहाँ कीड़े बीमारी और खरपतवार का प्रबंधन कर भी हो जाता है, जिससे खरपतवार भी कम निकलेंगे। अब ये तो जुताई का मैंने कार्यक्रम बताया, वैसे ही आपको गुड़ाई के काम करना है। पर अब देखा आपने कि किसान भाई बैल जोड़ी नहीं है या मजदूर नहीं है, तो सब हम लोग रसायन पे आ गए हैं। परंतु हमारी समझाइश यह रहेगी कि आप रसायन का उपयोग कम करते हुए यदि ये सब चीज अपना लेते हैं तो हम रसायन से दूर रहेंगे और कीट को भी प्रबंधन कर पाएंगे। तो एक मैंने एक उदाहरण दिया, जुताई है, गुड़ाई है, निंदाई है। अब निंदाई के लिए तो हमारे पास मजदूर श्रमिक बचे नहीं, तो हम ये कहते हैं कि कम से कम नहीं निंदाई तो गुड़ाई तो जरूर करवा लीजिए। और हमारे सौसर के जो कपास वाले भाई है वो गुड़ाई करते हैं, गुड़ाई से मतलब बखर चलाना, खड़ी फसल में बखर चलाना या डोरे चलाना या डूंडिया चलाना ये अंतर शस्य कहलाता है, और ये आपको कम से कम लागत में फायदे की बात हो सकती है। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये शस्य प्रबंधन हो गया, उसको करना है। पर यदि भौतिक प्रबंधन भी है, जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे कीड़े बीमारी को रोकने के लिए हम लोग गर्म पानी का उपयोग कर लेते हैं, तपिश का जैसे मैंने आपको बताया, तो कई बार आपने देखा होगा कि कीड़े चुनाई करके उसको बारिश की पानी में ऊपर में आ जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी तकनीक है जिसको भौतिक दशा को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं तो हमको इसका फायदा मिलता है प्रबंधन के लिए। सबसे बड़ी जो पद्धति है वो रासायनिक है। रासायनिक में मैं आपको ये कहूंगा कि बहुत कम उपयोग करिएगा, जितना आप उपयोग कम करेंगे आपकी खेती सुरक्षित रहेगी। पर आपको ये भी जरूर ध्यान देना होता है कि जब बहुत ही अंतिम अस्त्र यदि उपचार करना है तो हमको रसायन का उपयोग करना होता है। तो मैं कहूंगा कि उसमें 3-4 प्रकार के हमारे रसायन आते हैं, वो भी जैसे कीड़े अलग अलग है ना, वैसे पद्धतियों में भी अलग अलग है। तो ये कॉन्टेक्ट टाइप का आता है जिसको हम कहना चाहिए कि संपर्क जन कीटनाशक कहते हैं। जो भी संपर्क में आएगा वो कीट उस ये छिड़काव के तो वो मतलब खत्म हो जाएगा या उसके कंट्रोल कर लेगा या नियंत्रण हो जाएगा, तो वो संख्या कम कर देगा कीट को। तो कॉन्टेक्ट है। सिस्टमिक उन कीड़ों के लिए जो चूसने वाले होते हैं, इसके लिए जैसे आपने देखा होगा ना एमिडा प्रोपिड आया है, जैसे रस चूसने वाले जितने भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड कहेंगे हम इसको, उसका उपयोग करते हुए इन कीड़ों को नियंत्रण किया जा सकता है। उसके लिए व्हाइट फ्लाइज के लिए उपयोग करते हैं हम लोग इसका। तो बहुत सारे रसायन है जो रस चूसने वाले कीड़े को भी नियंत्रण कर सकते हैं, इनका उपयोग करते हुए इनको हमको कीट प्रबंधन करना होगा। वैसे कुछ रसायन है फ्यूमिगेशन वाले जो धूमन का काम करते हैं, जिसमें कि कीड़ा गुदमुरा के मर जाएगा और हमें वहां कोई अस्थि तो नहीं मिलेगा रसायन का, पर हवा में अपने चाके पर कहीं ना कहीं ये हवा में वो नुकसान करेगा। तीसरी चीज है, चौथी चीज है, बहुत सारे रसायन ऐसे जो हमको उसमें देने होते हैं आपके जमीन में, जैसे आपने देखा होगा दीमक है, आपका व्हाइट ग्रब है जिसको सफेद लट कहते हैं, उसके बाद बहुत सारे जो मिट्टी में पनपने वाले जो कीड़े हैं उनके नियंत्रण के लिए इसका नियंत्रण करने के लिए आपको ये करना पड़ता है, तो जिसको हम जमीन में डालकर कीड़े को नियंत्रण किया जा सकता है। जैविक नियंत्रण बहुत आज की उपयोगिता है, क्योंकि हमारा जो रसायन का जो उपयोग है बहुत ज्यादा, वो कहीं ना कहीं हमारे मानव जीवन के लिए बहुत दुखदायी है। तो ऐसे समय हमको जैविक प्रबंधन अपनाना होगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि जैविक प्रबंधन में बहुत सारे आयाम हमें मिले हैं, उसको आपको अपनाना पड़ेगा। जैविक में आपको बता दूं कि जैसे एनपीवी वायरस है, ब्यूवेरिया बासेलिना है, इनका उपयोग करते हुए बहुत सारी मतलब कीड़ों को नियंत्रण कर सकते हैं, ये हमको करना पड़ेगा। वैसे ही आजकल ये ट्रैप आ गए हैं, जिसमें लाइट ट्रैप आपने आप अपने घर में उपयोग करते हैं, लाइट ट्रैप है आपका, ल्यूर आ गया है जिसके की या में फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, तो जो सेक्टर रहता है उसमें मतलब फीमेल ऑर्गन या उसकी खुशबू रखी रहती है, तो मेल वहां आएगा या और वो वहां पर आकर घूमेगा और कहीं वो प्रपंच में फंस जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो लिंग अनुपात है वो बदलेगा और हमारे वो इंसेक्ट को प्रबंधन करने में सहायता होगी। वैसे ही
सर जी,
हाँ जी,
जैसा कि आपने आज विश्व कीट दिवस के अवसर पर महत्वपूर्ण जानकारी मोबाइल वाणी के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को और मोबाइल वाणी के श्रोताओं को दी, आज इस अवसर पर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते और आशा करते कि आगे भी कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा के माध्यम से मोबाइल वाणी के द्वारा समय समय पर आप हमें हमारे किसानों को मार्गदर्शन करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है जी, धन्यवाद जी।